नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मॉब लिंचिंग की घटना पर रिपोर्ट कैसे की जाए, क्योंकि मॉब लिंचिंग है या नहीं इसे लेकर पुलिस के अलग बयान होते हैं, परिवार वालों के अलग और मीडिया के अलग और भीड़ के अलग। आप केवल पुलिस के बयान पर ही भरोसा नहीं कर सकते। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में घटना हुई तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे जिन्होंने एक मामले में मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए। दूसरी तरफ पश्चिम यूपी के शामली में पुलिस ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ FIR कर दी है, क्योंकि पुलिस मानती है कि इन्होंने मॉब लिंचिंग लिखकर भ्रम और तनाव फैलाने का प्रयास किया है। पुलिस कभी ऐसे धार्मिक संगठनों के खिलाफ FIR नहीं कर पाती है, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ FIR कर दी गई। भीड़ की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं और केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि TV और रेडियो, अखबारों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि भीड़ की हिंसा या उन्मादी हिंसा में शामिल होने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा लगातार किया जाता है? लगातार। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि पत्रकार किसी घटना को मॉब लिंचिंग कब कहें, इसके लिए किसके बयान पर भरोसा करें। हम इन सवालों के साथ साथ हाल की कुछ घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें मॉब लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है। मगर शुरुआत हम 9 जुलाई के टेलीग्राफ और द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट से करना चाहते हैं, ताकि हम मॉब लिंचिंग के पीछे के कई कारणों में से एक की राजनीति को ठीक से समझ सकें। टेलीग्राफ में सुभाषिश चौधरी और द हिंदू में विजेता सिंह की रिपोर्ट तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक आरोप को लेकर है। महुआ ने अपने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि BJP के सांसद और केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने अपने लेटर हेड पर एक फॉर्म प्रिंट किया है और सीमा सुरक्षा बल BSF से आग्रह किया है कि एक व्यक्ति को बांग्लादेश 3 किलो बीफ ले जाने की अनुमति दी जाए, स्मगलिंग का आरोप लगाया। शांतनु ठाकुर ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्होंने किसी स्मगलर को पास देने के लिए नहीं कहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF इस पार से उस पार जाने वालों के सामान की तलाशी लेती है, उन्हीं चीजों को ले जाने दिया जाता है जिसकी अनुमति ग्राम पंचायत पहले से देता है। अब इन ग्राम पंचायतों पर तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है तो राजनीति के हिसाब से अनुमति दी जाती है। यह सब शांतनु ठाकुर का बयान है। उनका बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि BSF के हाथों लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए पत्र लिखा। BSF की तरफ से छपा है कि हम लोगों को मवेशी ले जाने की अनुमति नहीं देते, लेकिन बीफ ले जाने से नहीं रोकते हैं। द हिंदू में भी लिखा है कि तृणमूल के काउंसिलर बीफ ले जाने के लिए हर दिन ऐसे 80 पास जारी करते हैं। बीफ ले जाने के लिए BJP के सांसद पत्र लिख देते हैं, तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर भी। कितनी सामान्य बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब पर्दाफाश हुआ तब यह जानकारी निकल कर आई कि BJP ने बीफ निर्यात करने वाली कंपनी से 2 करोड़ का चंदा लिया। हमने इन उदाहरणों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस पगडंडी की तलाश में है जिसके सहारे मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को नए सिरे से रिपोर्ट कर सकें, आपको समझा सकें कि बंगाल में कितना नॉर्मल है BJP के नेता का बीफ ले जाने के लिए पत्र लिख देना। लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में इसी बीफ को लेकर कुछ लोग गौ रक्षक बन जाते हैं और किसी को भी घेर कर उसकी हत्या कर देते हैं। पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 4 जून के बाद हुई मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देश भर में रिपोर्ट हो रही हैं, मगर उनमें से कुछ की बात करने से पहले हम एक पुरानी घटना से शुरू करना चाहते हैं जो इस बहस को टॉर्च की रोशनी दिखाने का काम कर सकती है। जून 2018 में यूपी के हापुड़ में गौ कशी की अफवाह के बाद भीड़ ने 42 साल के कासिम कुरैशी की हत्या कर दी। इस हमले में 62 साल के समय दिन बुरी तरह घायल हुए मगर बच गए। यह मामला मॉब लिंचिंग का था मगर FIR में इसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बना दिया गया। समय दिन सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने मेरठ रेंज के IG से कहा कि भीड़ की हिंसा को लेकर जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं उसी के आधार पर इस घटना की जांच की जाए। इसी साल मार्च में स्थानीय अदालत ने कासिम कुरैशी की हत्या के मामले में 10 लोगों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्वेता दीक्षित ने अपने 157 पन्नों के फैसले में लिखा है कि जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति कासिम कुरैशी को मारा गया वह पूरे समाज के लिए खतरा है, चेतावनी भी। हमने यह जानकारी द वायर के उमर राशिद की रिपोर्ट से ली है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने लड़ा। कई रिपोर्ट में वृंदा ग्रोवर का नाम भी नहीं, यह ठीक बात नहीं है। हापुड़ कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आरोपियों की पहचान परेड नहीं कराई गई, तब हुई जब समय दिन खुद इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए और आदेश लेकर आए। जज श्वेता दीक्षित ने लिखा है कि 16 जून 2018 की घटना के बाद FIR लिखते समय पुलिस ने समय दिन के भाई यासिन पर दबाव डाला। गलत जानकारियां जोड़ी गईं कि कुरैशी की मौत मोटरसाइकिल दुर्घटना में हो गई। कोर्ट ने कहा कि कासिम कुरैशी और समय दिन पर गौ मांस ले जाने की अफवाह के बाद जानलेवा हमला हुआ था, न कि मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई थी। पूरी जांच के दौरान कहीं भी मोटरसाइकिल के मालिक का, मोटरसाइकिल के नंबर तक का जिक्र नहीं था। तो ये हाल है पुलिस का, उसकी जांच का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता तो क्या यह सब सामने आता? अब आते हैं शामली मामले में, जहां पुलिस कहती है मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया और YouTube चैनल पर FIR और परिवार के सदस्यों से बातचीत के आधार पर यह बात कही है। क्या मॉब लिंचिंग लिखने पर पत्रकारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, या जो भी इस तरह की हिंसा में शामिल रहे हैं उन्हें सजा दिलाने पर जोर होना चाहिए, या पत्रकारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए? इस हिसाब से तो हापुड़ की घटना के समय जिस पत्रकार ने मॉब लिंचिंग लिखा था उन्हें पुलिस की बात मानकर मोटरसाइकिल दुर्घटना ही लिखनी चाहिए थी। स्क्रोल ने शामली के थाना भवन के SHO से बात कर लिखा है कि YouTube चैनल हिंदुस्तान मीडिया के खिलाफ FIR हुई है। पुलिस के अनुसार चैनल ने भ्रामक जानकारी प्रकाशित की। यह चैनल बिहार के पत्रकार सदफ कामरान का है। इसके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कामरान का कहना है कि उन्होंने परिवार वालों से बात की थी, जो FIR में लिखा है उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई। कामरान का यह भी कहना है कि अगर मैंने न्यूज़ की रिपोर्टिंग की है तो FIR कैसे हो सकती है, यह बात ठीक है। इस FIR से पहले पुलिस ने 6 जुलाई को एक और FIR दर्ज की थी, जिसमें पत्रकार जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी के अलावा 3 अन्य लोगों पर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में FIR की। इन तीनों के नाम हैं आसिफ राणा, सैफ इलाहाबादी और अहमद रजा खान। FIR में फिरोज के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वह कुछ काम से आर्यनगर गया था, जहां कुछ लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। शामली के SP अभिषेक ने भी स्क्रोल से कहा है कि यह मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, फिरोज किसी के घर में घुसने का प्रयास कर रहा था, उस दौरान पीटा गया, पोस्टमार्टम किया गया है। पुलिस का कहना है कि तनाव फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया पर मॉब लिंचिंग का मामला बनाया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेन प्रेस कोर और ऑनलाइन न्यूज मीडिया की संस्था डिजीपब ने पत्रकारों के खिलाफ FIR की निंदा की है। डिजीपब ने कहा है कि जनहित में न्यूज प्रकाशित करने पर पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करना क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग है, पुलिस को FIR वापस लेनी चाहिए। शामली की घटना 4 जुलाई की है। फिरोज की हत्या के मामले में पुलिस ने पिंकी, पंकज, राजेंद्र और उनके साथियों को नामजद किया है। ये सब हम मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही बता रहे हैं। पुलिस ने पत्रकारों और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 356 के तहत धर्म के आधार पर शत्रुता भड़काने का मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस कहती है कि मॉब लिंचिंग नहीं है, लेकिन दूसरा वर्जन है कि भीड़ ने हत्या की। इस तरह के मामले कई बार आ चुके हैं कि जो मारा गया है उस पर घर में घुसने या चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, यह भी देखा गया है। इसलिए सवाल उठाने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कई लोग किसी को पकड़कर मारते हैं, अधमरा कर देते हैं, बाद में मर जाता है। इस दौरान वे पुलिस को सूचना क्यों नहीं देते? ऐसी तो कोई सूचना नहीं है कि फिरोज के पास हथियार था। पुलिस यह भी देखे कि क्या ये सभी नफरती सोच के आवेश में ऐसा कर बैठे। इस वीडियो में हमने हापुड़ का उदाहरण दिया शुरू में, तब पुलिस कहती थी कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में कासिम कुरैशी की मौत हुई, गौ हत्या के शक में भीड़ ने उनकी हत्या नहीं की। अब अगर हापुड़ की घटना के मामले में पुलिस के बयान पर ही भरोसा कर लिया जाता तो क्या कासिम कुरैशी को इंसाफ मिलता? शामली के मामले में द वायर में उमर राशिद पुलिस से भी कुछ सवाल करते हैं। उमर राशिद लिखते हैं कि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है, जबकि आमतौर पर वीडियो के तहत मामले की पूरी जानकारी पुलिस दे देती है। फिरोज की पिटाई और उसकी मौत 4 जुलाई को हुई, जबकि पुलिस ने FIR 5 जुलाई की दोपहर दर्ज की। पुलिस ने जब फिरोज के भाई अफजल का बयान लिया, उसमें लिखा कि फिरोज कभी कभार नशा करता था। पुलिस का कहना है कि मॉब लिंचिंग के कारण फिरोज की मौत नहीं हुई और उसके शरीर पर कोई निशान मौजूद नहीं है। जबकि द वायर से बात करते हुए अफजल ने कहा है, जो फिरोज के परिवार वाले हैं, कि जब फिरोज को घर लाया गया तब उसकी हालत बहुत खराब थी, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में यह बताया जा रहा है कि कोई चोट नहीं लगी है, तो फिर फिरोज की मौत आखिर कैसे हुई? राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन से विधायक अशरफ अली खान ने इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहा है, हत्या कहा है, और घटना के दो दिन बाद वे अपने बयान में कहते हैं कि इसे मॉब लिंचिंग कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई के बाद वायर में उमर राशिद, स्क्रॉल में जफर अफाक, ऑनलाइन पत्रकारों की संस्था डीजीपब इत्यादि ने इस घटना को अपनी तरफ से मॉब लिंचिंग नहीं कहा है, मर्डर या किलिंग या डेथ का प्रयोग किया है। तब भी क्या ऐसा कहने से समाज में तनाव फैल जाता है? मॉब लिंचिंग लिख देने से क्या पत्रकारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए? अगर परिवार के लोग आरोप लगा रहे हों तो क्या पत्रकार रिपोर्ट ना करें? जून के महीने में अलीगढ़ में भी एक घटना हुई जिसके मॉब लिंचिंग होने या नहीं होने को लेकर विवाद चल रहा है। अलीगढ़ की घटना में भी जो मारा गया है उस पर घर में घुसने और चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर पुलिस हापुड़ मामले में ही तुरंत भीड़ के खिलाफ कार्रवाई कर देती तो आज शामली में पिंकी, पंकज, राजेंद्र जाने अनजाने में कभी ऐसा काम नहीं करते। अलीगढ़ में भी कई लोग जो अच्छे साधन संपन्न परिवारों के हैं वो आज जेल में नहीं होते। अब इन सभी के खिलाफ जांच तो होगी, मामला भी लंबा चलेगा, हो सकता है जेल में लंबा रहना भी पड़े। इस तरह से हापुड़ के मामले में कुछ लोगों को उस समय तो लगा था कि राजनीति के दम पर उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता, बहुत सारी भीड़ आती थी उनके समर्थन में। मगर हुआ क्या, 6 साल बाद 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसलिए शामली और अलीगढ़ के मामले पर बात करते हुए हापुड़ के मामले में जो सजा सुनाई गई है उसे आप सामने रखिए तो चीजें साफ होंगी। हापुड़ केस में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों के नाम हैं युधिष्ठिर, राकेश, कानू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करण पाल। इन 10 लोगों के अलावा एक नाबालिग भी है, कासिम कुरैशी के भाई सलीम, और समय दिन ने इनकी फांसी की सजा का विरोध किया है। कहा है कि इन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन गौ हत्या की अफवाह झूठी थी और इसके चक्कर में ये 10 लोग हत्यारा बन गए। यह याद रखा जाना चाहिए कि जिनकी राजनीति इससे चमकनी थी वो सत्ता सुख भोग रहे हैं, मगर इन 10 का परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। बेशक कासिम के लिए इंसाफ की लड़ाई में सलीम का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, जमीन बेचनी पड़ी और अपनों की जान गंवानी पड़ी। हापुड़ की घटना अकेली घटना नहीं है जो पुलिस की नाकामी को उजागर करती है। फिर भी हापुड़ की घटना से हम देख पाते हैं कि मॉब लिंचिंग के समय पुलिस बहुसंख्यक आबादी या स्थानीय आबादी के दबाव में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा किया जा सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। अलीगढ़ में भी क्या हुआ, तंदूर में रोटी बनाने वाले औरंगजेब की हत्या के मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। 20 जून के जागरण में खबर छपी कि उन्मादी हिंसा में मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है, जिससे शहर में तनाव हो गया है। जागरण ने अपनी रिपोर्ट में उन्मादी हिंसा का प्रयोग किया है, जिसे अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग ही कहा जाएगा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेजा तो इन 6 आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बाजार बंद कर दिया गया। बीजेपी और हिंदू संगठन के नेता सड़क पर आ गए। मेयर प्रशांत सिंघल और बीजेपी विधायक मुक्ता संजीव राजा ने धरना दिया। जागरण लिखता है कि औरंगजेब कपड़ा व्यापारी मुकेश चंद्र मित्तल के घर चोरी के इरादे से जा रहा था, पकड़ा गया। पिटाई की इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। मुकेश चंद्र मित्तल और उनके बेटे राहुल सहित 10 लोगों के खिलाफ केस हुआ है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो 2 मिनट 18 सेकंड का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है गली में एक युवक नीचे गिरा हुआ है और उसे घेर कर कुछ लोग मार रहे हैं। दूसरा वीडियो 49 सेकंड का है, जिसमें एक शख्स घायल औरंगजेब के घुटने तोड़ने की बात कर रहा है। औरंगजेब पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन नवभारत टाइम्स में लिखा है और मैं हूबहू पढ़ भी रहा हूं। पुलिस अधीक्षक एम शेखर पाठक ने बताया, मृतक के परिवार की शिकायत के अनुसार फरीद यानी औरंगजेब जब देर रात ढाबे से लौट रहा था, रास्ते में भीड़ ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटा। यूपी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही नेता पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और गिरफ्तारी गलत है। इस राजनीति के बाद भी गिरफ्तार लोग अभी तक जेल में हैं। तो सबक यह है कि भीड़ की हिंसा में शामिल होने पर जेल होती है। अलीगढ़ का केस अलग है। जिन लोगों को जेल भेजा गया उनमें से कई प्रभावशाली लोग हैं, संपन्न हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन किसी को तो सोचना चाहिए कि नफरती हिंसा की आग कहां तक फैल गई है। इस हिंसा का विरोध होना चाहिए, ना कि आरोपियों को बचाने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, तस्वीरें भी और नाम भी पढ़िए। नामजद हैं डिम्पी अग्रवाल के अलावा अंकित वार्ष्णेय, जय गोपाल, चिराग वार्ष्णेय, राहुल मित्तल, कमल बंसल हत्या के मामले में जेल में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संजय वार्ष्णेय, ऋषभ पाठक, अनुज अग्रवाल, मोनू पाठक, पंडित विजय गढ़वाला का नाम भी आरोपियों में है और इनमें से कुछ के बारे में छपा है कि वे जेल में हैं और कुछ अभी नहीं। बताया जाता है कि इनमें से कई लोग साधन संपन्न हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, इनकी दुकानें हैं। राहुल मित्तल के पिता मुकेश चंद्र मित्तल कामयाब व्यापारी हैं। इन लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? इनके लिए तो बहुत आसान था पुलिस बुला लेना। जब इनके समर्थन में बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर सकते हैं तो ये लोग उन्हीं नेताओं से कहकर पुलिस बुला सकते थे या खुद ही पुलिस को फोन कर सकते थे। औरंगजेब के मरने के 10 दिन बाद उसके खिलाफ डकैती और छेड़खानी का मामला दर्ज कर देने से क्या उसकी हत्या हुई यह तथ्य बदल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यह साबित करना ही होगा कि 10 दिन बाद FIR क्यों हुई। 4 जून के नतीजे आने के बाद देश भर से मॉब लिंचिंग की कई खबरें आई हैं। हम सभी घटनाओं का यहां जिक्र नहीं कर पाएंगे, वीडियो अंतहीन हो जाएगा। पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको हाल की घटनाओं और इसके बाद की राजनीति में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा। बस ऐसी घटनाओं को लेकर विपक्ष की चुप्पी हैरान करती है। हालांकि अलीगढ़ की घटना के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद औरंगजेब के परिजन से मिलने घर गए। इंडिया गठबंधन के नेता भी साथ में थे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस से लेकर अन्य दलों के नेता कथित रूप से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर चुप क्यों हो जाते हैं, औपचारिक बयान देकर किनारा क्यों कर लेते हैं। बार बार सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को हाथरस हादसे के पीड़ितों की तरह मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों के परिवारों से मिलने में क्या आपत्ति है। ठीक है, घटना के तुरंत बाद नहीं जा सकते, लेकिन कभी तो जाना चाहिए। यह तो व्यापक हित की बात है कि इस तरह की हिंसा का विरोध किया ही जाए। कांग्रेस के नेताओं के जाने के बाद आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण भी औरंगजेब के परिवार से मिलने गए। इमरान मसूद और चंद्रशेखर रावण का यह बयान कुछ दिन पहले का है।
पार्लियामेंट चल रही, मैं 101% आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा, इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं।
देखिए, हम लोग सारे पार्टी के लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए थे, और चूंकि ये समाज के सौहार्द को तोड़ने वाली घटनाएं हैं और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम शासन से प्रशासन से ही बात करेंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत दुखद घटना है, हम सब लोग दुख के अंदर इनके साथी हैं।
भीड़ की हिंसा अपने आप में गलत है, समाज का बर्बर चेहरा है। आए दिन वीडियो आते रहते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संदर्भों से। कुछ लोग मिलकर किसी महिला या पुरुष को मार रहे होते हैं। हाल में ऐसे ही 2 वीडियो पश्चिम बंगाल से आए और कार्रवाई भी हुई, लेकिन कब हुई? जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाया। आपको याद होगा जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ तो भारत भर में ट्रक वाले हड़ताल पर चले गए। उनका यही कहना था कि दुर्घटना स्थल से भाग जाने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा और 7,00,000 जुर्माना जैसी सजाएं बहुत कठोर हैं। इसका कारण यही था कि भीड़ हिंसा करती है। अगर वे दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल ले जाने के लिए रुकेंगे तो भीड़ की हिंसा के शिकार हो जाएंगे। भीड़ की हिंसा हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन धर्म के आधार पर भीड़ की हिंसा राजनीति है और राजनीति की सच्चाई भी, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ से भी 7 जून को ऐसी घटना की खबर है। गुड्डू खान, चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी की कथित रूप से भीड़ ने हत्या कर दी। इंडियन एक्सप्रेस में जयप्रकाश नायडू ने लिखा है कि इस मामले में शुरू में पुलिस का कहना था तीनों या तो पुल से गिर गए या कूद गए, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया इन्हें पीट पीट कर मारा गया है। तो इस केस में भी दो राय नजर आती है, एक पुलिस की राय और एक परिवार वालों की राय। क्या इसे रिपोर्ट करना, मॉब लिंचिंग कहना परिवार वालों के बयान के आधार पर अब अपराध हो जाएगा? तब तो हर पत्रकार जेल में होगा और भीड़ की हिंसा करने वाले बेलगाम हो चुके होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है नवीन सिंह ठाकुर, मयंक शर्मा, हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल। नवीन ठाकुर ड्राइवर हैं और मयंक शर्मा ट्रांसपोर्टर। राजा अग्रवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासमुंद जिले का प्रचार प्रमुख रह चुका है। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। ये लोग मांग कर रहे थे कि इस घटना को मॉब लिंचिंग का नाम देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अब यहां कई बातें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अलीगढ़ में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के नेता हैं, हिंदू संगठन हैं, व्यापारी संगठन है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग मॉब लिंचिंग कहे जाने के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो केवल पुलिस नाराज नहीं होती है कि पत्रकार ने मॉब लिंचिंग क्यों लिखा, मगर पुलिस पत्रकारों पर FIR कर देती है, इन संगठनों पर नहीं करती है। जिनकी सरकार है वो भी पुलिस पर दबाव डालने चले आते हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि उसने मॉब लिंचिंग क्यों कहा। गुजरात के आनंद में भी ऐसी ही एक घटना हुई। क्रिकेट के मैच के बाद भीड़ ने 23 साल के सलमान वोहरा की हत्या कर दी। इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और भी कई जगहों से इस तरह की घटना सामने आई है। 2018 में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्यवस्था दी। हर जिले में ऐसी भीड़ पर किस तरह से नजर रखी जाएगी, इन मामलों की जाँच की क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में बताया। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने भीड़ द्वारा हिंसा और भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या यानी लिंचिंग के मामलों में एक 11 सूत्री गाइडलाइन जारी की थी। कोर्ट ने कहा था कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता और देश में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। मूल बात यही है कि अब भी भीड़ कानून अपने हाथ में ले रही है, चाहे वो किसी बात से गुस्साई भीड़ हो या धर्म के आधार पर जमा नफरती भीड़ हो। यह हिंसा लड़कों को हत्यारा बना रही है, आपके लड़कों को हत्यारा बना रही है और किसी का घर भी उजाड़ रही है। अफसोस कि 10 साल से भीड़ की हिंसा पर बात हो रही है लेकिन अभी तक यह जारी है। सुप्रीम कोर्ट को अब आगे आकर देखना चाहिए 6 साल बाद उसके बनाए दिशा निर्देशों की क्या हालत है और क्यों भीड़ की हिंसा नहीं रुक रही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।